الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ کو مبارک ہو. آج ہم 15واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں, نئی سورہ نیا سپارہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کی آیات کو ہمارے سینے میں اتار دے اور ہمارے عمل میں لے آئے اور عمل کو ہمارے لیے آسان فرما دے. دیکھتے ہیں تفسیر سورہ اسراء آیت نمبر 1-10. سورت کی پہلی آیت ہمیں معراج, اسراء والمعراج, اس قصے کو بیان کرنے والی ہے. اور اس میں جو پہلا لفظ جس سے یہ سورت سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہے سبحان. اس لفظ سے ہم سب واقف ہیں. اب یہ لفظ کیوں بولا جاتا ہے؟ جب ہم کوئی بہت ان یوژول, کوئی بہت بڑی ایسی امیزنگ چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. تو بیسیکلی یہاں پہ سبحان اللہ ہی کہا گیا, اللہ کی جگہ اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کا یہ کمال بتایا گیا کہ وہ اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ایک رات میں. یہ کمال کیوں ہے یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. پہلے سبحان کے لفظ کو دیکھیں. سبحان کا لفظ سین با ہا سے اور پانی میں تیزی سے تیرنا, اوپر اوپر فلوٹ کرنا, جیسے کہ سورہ یاسین میں آتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے. تو تسبیح کا لفظ بھی جب ہم بولتے ہیں تو, اور سبحان کا لفظ بھی, تو یعنی ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو پاک بیان کرنا جو اس کے شان کے لائق نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ایک معنی یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بہت تیزی اور سرعت کے ساتھ انجام دینا, ٹھیک ہے. تو سبحان کا لفظ ہے نا, ہر عیب ہر نقص سے اللہ تعالیٰ کو آپ نے ابو کر دیا. میں نے کہا نا اوپر اوپر فلوٹ کرنا, اس سے ابو کر دیا. اور اسی وجہ سے یہ لفظ کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا صرف سوائے اللہ تعالیٰ کے, کیونکہ کسی اور میں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ ہر نقص سے پاک ہو, ہر کمی سے پاک ہو, ہر عیب سے پاک ہو, یہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو جہاں آپ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نہ ہر نقص سے پاک قرار دیتے ہیں نا کمال کی حد تک, اس کے ساتھ ساتھ جو بھی خوبیاں ہیں اچھی صفات ہیں ان کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ کمال کی حد تک اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ ہیں. یعنی بری اور عیب اور نقص والی صفات کمال کی حد تک ہم ان کو نگیٹ کرتے ہیں اور خوبیوں کو ہم اللہ تعالیٰ کے اندر بیان کرتے ہیں کہ کمال کی حد تک ہے اس کی جتنی صفات ہیں. سمجھ آئی بات؟ تو تمام عمدہ صفات پرفیکشن کی حد تک اس میں ہیں. مثال کے طور پہ کوئی انسان سخی ہو سکتا ہے لیکن جیسے اللہ تعالیٰ سخی ہے ویسے نہیں ہو سکتا, اس کے اندر کمال کی حد تک یہ خوبی ہے. اسی طرح رحم کی خوبی, اسی طرح کرم کی خوبی, اس طرح بخشنے کی خوبی, اور اسی طرح جو بھی نیگیٹو صفات ہیں وہ ان سے پاک ہے, جیسے کمزوری ہے, بڑھاپا ہے, فقر ہے, یا جو بھی اور نیگیٹو چیزیں ہیں, نیند ہے, وہ بھی کمزوری کی ایک علامت ہے, موت ہے, ان سب سے وہ کمال کی حد تک دور ہے, ان سب سے وہ پاک ہے. اسی وجہ سے سبحان اللہ بہت عظیم کلمہ ہے, بہت بڑا کلمہ ہے. और इसीलिए इसका अजर बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम इतनी बड़ी बात डिक्लेयर कर रहे होते हैं जब हम ये सिर्फ एक लफ्ज अल्लाह ताला के लिए बयान करते हैं कि वो सुबहान है, और जो उस दिन में 100 दफा ये कह दे सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, उसके तो गुनाह मिटा दिए जाते हैं, चाहे उसके इतने गुनाह हैं कि समुंदर की झाग से भी ज्यादा। समुंदर के ऊपर देखिए आप कितनी झाग होती है, जब तो इतने गुनाह भी है ना, तो वो भी माफ कर दिए जाते हैं। और ये कलेमा अल्लाह ताला को बहुत महबूब है, ये जो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के लिए भी पसंद फरमाया है ना, तो वो भी यही कलेमा सुबहान रब्बी व बिहम्दिही, सुबहान और रब्बी व बिहम्दिही, ऐसे इस फरिश्ते बोलते हैं। और ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद कलिमात, जो महबूब कलिमात हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही उनमें भी है। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया अल्लाह ताला के नजदीक महबूब 4 कलिमात हैं, उनमें भी सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, उसमें भी ये है। तो हम जब ये बात करते हैं तो ये एक बहुत अजीम कलमा है जिसको समझ के कहना चाहिए। तो अब यहां पे क्या कहा गया कि सुबहान है, यानी अभी जब हम ये बात आगे जो बयान होने वाली है, ये इतनी अमेजिंग बात है, इतनी जबरदस्त, इतनी बड़ी बात है। सुबहान है वो जात जो अल्लदी जो असरा ले गया, रात के बाद जैसे मैंने आपको बताया ले जाने के लिए आता है, तो रात के वक्त ले गया भी अब्दी ही अपने बंदे को, लैलन, लैलन जो है वो नकेरा है, और नकेरा में एक बात किल्लत की भी होती है, एक इसके अंदर माना किल्लत का भी होता है, यानी ये कमी बता रहा है, यानी एक रात, पूरी रात नहीं, रात का भी कुछ हिस्सा, रात के भी कुछ हिस्से में ले गया। और ये कितनी जबरदस्त बात है कि पूरी रात में नहीं ये सफर हुआ। यहां से इसरा जो है ना, पहले ये भी आपको बता दूं कि इसरा जो है ये उस सफर के फर्स्ट पार्ट को कहते हैं, जो कहां से, मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये जो पार्ट है इसको इसरा कहते हैं। फिर मस्जिद अक्सा से जो आसमानों तक की सैर है वो मेराज कहलाती है, आइन रोजीम से, और वो ये जमीनी वाली नहीं, वो जो आसमान की तरफ जाना है, जैसे अरूज भी इसी से है ना, ऊपर को जाना, तो वो वाली जो सैर है उसका नाम मेराज, और जो पहली है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक वो इसरा है। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। अब ये जो इसरा है और जो मेराज हुई है, ये सिर्फ एक रात में हुई है, जबकि ये सफर इतना लंबा था कि 30 दिन रात कोई चलता रहता था उस जमाने में, और इससे भी ऊपर बाज दफा हो जाता था, तो तब जाके मस्जिद अक्सा तक पहुंचते थे, यानी एक महीने की मसाफत आप समझ लें, तब जाके पहुंचते थे। और कहां ये कि एक ही रात में ये सफर तय हो गया, चले भी गए और वापस भी आ गए, जो 2 महीनों की बात बनती है, और एक रात के भी एक हिस्से में, जो कि और भी हैरान कुन बात है कि जब नबी अलैहिस्सलाम वापस पहुंचे तो आपका बिस्तर गर्म था अभी तक, जैसे हमारा बिस्तर गर्म होता है ना उस वक्त हम सोए होते हैं, फिर उठते हैं तो अभी थोड़ी देर गर्म ही रहता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर भी अभी गर्म था, सुभान अल्लाह। यानी ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानियों में से है, वल्लाहु आलम अल्लाह ताला ने वक्त को रोक दिया दुनिया में या क्या हुआ हम ये कुछ नहीं जान सकते, मगर इतनी जल्दी, यानी दुनिया में अभी इसका मतलब टाइम वही स्टिल था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से मस्जिद अक्सा भी गए, फिर क्या क्या वहां पे हुआ, फिर आसमानों पे गए, फिर वहां पे क्या क्या निशानियां देखी, फिर वापस मस्जिद अक्सा आए, फिर वापस मस्जिद हराम आए, इतना लंबा सफर, और मे बी फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स, दैट्स इट। आज भी हमारे पास इतनी तेज सवारियां हैं, तब भी ये सफर इतनी 1 मिनट में नहीं हो सकता कि वापस भी चले गए और वापस भी आ गए, चले भी गए और वापस भी आ गए, और कुंडी अभी तक हिल रही है और बिस्तर अभी तक गर्म है। तो ये बहुत अजीम सफर है, और ये किसने करवाया सफर? अल्लाह ताला ने। इसलिए ये लफ्ज आया सुबहान, पाक है वो जात जिसने ये सफर करवाया, एक पूरी रात में नहीं, रात के भी कुछ हिस्से में। और लफ्ज क्या आया, किसको करवाया? यहां पे आ सकता था अपने नबी को, अपने रसूल को, मुजतबा को, मुस्तफा को, लेकिन लफ्ज क्या आया, भी आबदी ही, अपने बंदे को। एक एक लफ्ज यहां पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सुबहान का पहले देखा, असरा का देखा, ये कौन सा सफर है, भी आबदी ही को हम देखेंगे। लैलन का आपको पता चल गया, रात का कुछ हिस्सा। अब अब्द में क्या है, अब्द में इंसान के लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है, बहुत बड़ा ऑनर है कि रब्बे कायनात कह दे ये मेरा अब्द है। अब्दियत जो है ना, वो अल्लाह ताला के सामने सबसे बड़ा जो इंसान का मकाम हो सकता है वो अब्दियत का है। और ये तभी होता है जब इंसान कुर्ब की बुलंदियों तक पहुंच जाता है, बहुत करीब हो जाता है। और यहां पे ये बता दिया गया कि इंसान मेराज पे भी पहुंच जाए ना, और इतना बड़ा ये एक मोजा समझ ले हो गया, इतना हैरत अंगेज वाकया हो गया जो तारीख इंसानी में ना कभी पहले हुआ ना कभी हो सकता है। ईसा अलैहि सलाम को उठाया गया आसमानों की तरफ, लेकिन उनका बिल्कुल डिफरेंट है, और मेराज का वाक्य बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे आप इसकी तफसीलात में भी देखेंगे। तो उनका जो ऊपर उठाया जाना ना, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए भी और वापस भी आ गए, और वो जो नामुमकिनात में से लगता है, जिसको अकल कहती है कि मान ही नहीं सकते, ऐसे कैसे हो सकता है, वो अल्लाह ताला ने अपने बंदे को करवाया, लेकिन बंदा फिर भी बंदा ही रहा, वो खुदा नहीं बन गया। ईसा अलैहि सलाम के मानने वालों ने तो उनको खुदा बना दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के साथ ऐसा कुछ नहीं, वो फिर भी अब्द ही है। और अब्दियत का मकाम इतना प्यारा मकाम है, अल्लाह ताला इंसानों को यही देखना चाहता है कि वो उसके अब्दे कामिल बन जाए, मुकम्मल गुलामी में आ जाए। और इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है कि कैसे वो अल्लाह ताला के अब्द बन के उन्होंने दिखाया। और जो अल्लाह ताला का अब्दे कामिल बन जाता है, फिर अल्लाह ताला के उसके ऊपर देखें किस तरह से करम होता है, किस तरह अल्लाह ताला उसको अपनी निशानियां दिखाता है। और ये इसलिए इतना बड़ा मकाम है, ऐसे समझ लें कि जैसे आपको मैं ऐसे दुनिया की मिसाल सिर्फ आपको समझाने के लिए देती हूँ, वरना इसका आप रियलिटी से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं रख सकते, लेकिन जस्ट समझाने के लिए। मसलन आपको कोई कहे कि मैं व्हाइट हाउस में जॉब करता हूँ, अब ना वो वहां पे कुछ भी जॉब करता हो, इतना उसका कह देना ही ना कि मैं व्हाइट हाउस में जॉब करता हूँ, मैं यूएन में जॉब करता हूँ, मैं कोई बहुत बड़े इस तरह इदारे का नाम ले या बहुत बड़ी जगह का नाम ले, तो कितना आप इससे मुतासर हो जाते हैं। इसी तरह कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन, जहानों के रब का गुलाम हो, इससे बड़ी सआदत और कुछ नहीं हो सकती इंसान के लिए, बहुत बड़ी सआदत की बात है, बहुत बड़ा मकाम है ये इंसान के लिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने अब्द का लफ्ज यहाँ पे बयान फरमाया, नबी का भी नहीं, रसूल का भी नहीं, ये आला तरीन मकाम है। तो इसका ही, इस अबदियत का अमली इजहार तो पूरी जिंदगी में आप अल्लाह ताला की इताअत करके करते हैं, यानी आप अगर अल्लाह ताला के अब्द बनना चाहते हैं ना, पूरी जिंदगी अल्लाह ताला के आगे झुके रहने, ये अब्दियत है। और इसको सिंबॉलिकली, इसको कैसे इजहार हम कैसे करते हैं, सजदा करके, जिसमें इंसान अपने जिस्म का सबसे जो इज्जत वाला मकाम है, उसकी पेशानी है, उसका माथा है, उसको जमीन के ऊपर रख देता है, सबसे नीचे, जमीन से नीचे तो कोई चीज नहीं है, उसको जमीन में रोल देता है, अपनी अब्दियत का इजहार करता है कि मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ सिर्फ तेरा गुलाम। और इंसान इस हालत में जब होता है तो अल्लाह ताला के सबसे करीब होता है। तो सजदा अब्दियत की इंतहा है, इसलिए अल्लाह ताला के अब्द होना बहुत बड़ा मकाम है। और अगली सूरत में भी अल्लाह ताला ने अपने अब्द कह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये लफ्ज बयान किया है। तो अल्लाह ताला पाक है, अल्लाह ताला वो जात है जो एक ही रात में ले गया अपने बंदे को, अपने बंदे को कहा वे आबदी ही, अपने बंदे को, सिर्फ बंदा नहीं, बहुत सारे लोग किसी और के बंदे बन जाते, कोई दुनिया का बंदा है, कोई माल का बंदा है, कोई ओहदों का बंदा है, लेकिन कोई अल्लाह का बंदा है। तो अपने बंदे को ले गया, इसमें मोहब्बत भी है, इसके अंदर एक ताल्लुक की बात भी है, इसमें कुर्ब की बात भी है, और इसमें झलकती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कि कैसी होगी आपकी जिंदगी जो अब्दियत वाली जिंदगी है। जितना अल्लाह ताला के आगे झुकता जाता है इंसान, उतना ही अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देता है। आबद में गुलामी है ना, बंदगी है ना, अल्लाह का गुलाम बनने में इंसान की शान है, इंसान का ऑनर है। इसलिए दुआ मांगी अल्लाह ताला हमें अपनी बंदियां बना ले, अल्लाह अपने बंदों में शामिल फरमा ले जिनका उससे ताल्लुक हो, जो उसके आगे झुकने वाले हो। तो ये बात बता के, असल में मक्की सूरत है तो कुफारे मक्का को भी वार्निंग दी जा रही है कि तुम्हें पता नहीं जिस हस्ती की तुम मुखालफत कर रहे हो वो अल्लाह के नजदीक क्या मकाम रखती है, तुम उनके साथ ये सलूक कर रहे हो और देखो अल्लाह ताला के हाँ उनका कितना बुलंद मर्तबा है। ये अल्लाह ताला उनको अपनी निशानियां दिखाने के लिए आसमानों की सैर करा दी, और जब एक इंसान मुखालफतों में घिरा हुआ है, उनके साथ वो सलूक हो रहे थे उस वक्त कि मक्की जिंदगी का सबसे शदीद तरीन दौर था, हर तरफ से ठुकराया जा रहा था, हर तरफ से रिजेक्शन, इवन ताइफ गए तो वहां से भी रिजेक्शन और बुरी तरह रिजेक्शन। तो उस वक्त इंसान सोचता है कि जाए तो जाए कहाँ, लेकिन उनकी कदर तुमने नहीं की मगर रब्बे कायनात के हाँ उनकी कितनी कदरों मंजिलत है इसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते, तुम्हें पता ही नहीं तुम किस हस्ती की मुखालफत कर रहे हो। और आज तक भी उनकी मुखालफत में बहुत सारे इंसान लगे हुए हैं, कोशिशों में लगे हुए हैं, कभी किताबें लिखते हैं, कभी कार्टून बनाते हैं, कभी किसी तरह ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं, कभी ऐसे बयानात देते हैं, मगर जिसकी शान इतनी बुलंद हो कि रब्बे कायनात उनको अपने पास बुला ले, जो किसी इंसान को कभी नसीब नहीं हुआ और ना ही हो सकता है, उनको तो उनके बारे में बात करना तो ऐसे ही है कि जो कोई सूरज की तरफ कोई थूकेगा भी तो अपने ऊपर ही थूक पड़ेगा। लोग जानते नहीं, इंसानियत जानती नहीं कि वो हस्ती है कौन और अल्लाह ताला की बारगाह में उनका मकाम क्या है। तो असल चीज इंसान की जो कदर होती है ना, वो ही है जो अल्लाह के यहाँ उसकी कदर होती है। इंसानों में हमारी चाहे ना कदरी हो रही हो, इंसानों में चाहे आपको झुटलाया जा रहा हो, आप कोई मुखालफत की जा रही हो, आपके दुश्मन बन गए हो, लेकिन अगर अल्लाह के हाँ आपका मकाम है तो कोई फिक्र की बात नहीं। यही बहुत बड़ी बात है कि आप अल्लाह के अब्द बन जाएं, अल्लाह की बंदियां बन जाएं। तो ये इतना बड़ा मर्तबा है कि फिर कोई परवाह करने की जरूरत नहीं कि कौन क्या कह रहा है, कौन मेरा कितना बड़ा मुखालिफ है। अब ये जो सहर थी, ये इतना बड़ा फितना बन गई थी कुफारे मक्का के लिए, इसलिए कि वो को तो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई जाए, जो ये कह रहे हैं वो गए और फिर वहां से सैर करके आए और ये आके बयान कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। उनके लिए यही बात बहुत बड़ा फितना बन गई थी। और ज्यादा मुखालफत में तुल गए। अब उनके पास एक शोशा आ गया, ये देखो ये तो अपने ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, ये तो ये कह रहे हैं, वो सफर जो इतना लंबा है वो कैसे कर सकते हैं इतनी जल्दी में, ये एक रात में ही गए और वापस भी आ गए, देखो देखो लोगों। और अल्लाह ताला ने इसको एक आजमाइश बना दिया उनके लिए। और आज तक भी बाज लोग ये कहते हैं कि ये वाकया जो है ये ख्वाब है, ये ख्वाब है, हालांकि ये वाकया बेदारी में और बेमा जिस्म के और रूह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफर तय किया। इसी वजह से तो इस इतना हैरान कुन है कि इसलिए सुबहान का लफ्ज आया, वरना अगर ये ख्वाब की बात होती तो आप ये सोचें कि मैं अगर आपको कहूं कि मैं आज रात ख्वाब में चांद पे गई थी तो कोई इसमें हुई मसले की बात तो नहीं, आप ये तो नहीं कहेंगे नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे, इसलिए कि ख्वाब में कोई कहीं चांद जो छोड़ें, अगर मैं कहूं कि मैं आसमानों की सैर करके आई, मैं जन्नत से होके आई, आज मैंने ख्वाब में जन्नत देखी है, मैं वहां पे जा रही थी, मैं ऐसे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम तब होता है जब कोई कहे कि मैं इस जिस्म के साथ गया हूं, तब प्रॉब्लम है ना। आप वो कोई इतने बेवकूफ तो नहीं थे कि कोई कहे उनको कि ख्वाब में मैं गया और वो उसकी मुखालफत शुरू कर दे। तो ये उनका मुखालफत करना, ये एक पहली इस चीज की साइन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मैं ख्वाब में गया हूं, बल्कि ये फरमाया था मैं इस जिस्म के साथ गया हूं। इसीलिए तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरी इस बात का कौन एतबार करेगा, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था सिद्दीक, जो आपकी उम्मत का सिद्दीक है वो आपकी इस बात की तस्दीक करेंगे। इसका साफ मतलब पता चलता है कि ये ख्वाब नहीं था। इसी तरह यहाँ पे सुबहान का लफ्ज इस चीज का साइन है कि ये ख्वाब नहीं था। ख्वाब में कोई हैरत अंगेज बात थोड़ी है, ये तो एक बहुत सुपर नेचुरल एक वाकया था, सुपर नेचुरल वाकया था, जिसलिए सुबहान का लफ्ज आया। जैसे आप अमेजिंग कोई चीज देखें तो आप कहें सुबहान अल्लाह ऐसे हो गया, ठीक तो ये रिवायत तकरीबन 30 के करीब रावियों से अहादीस में आई है, और बेशतर इनमें बुखारी और मुस्लिम में ये रिवायात आई हैं। तो थोड़ा सा इस वाक़े को देख लेते हैं, क्योंकि बड़ा दिलचस्प वाक़या है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिदुल अक्सा तक ले जाया गया और रात के एक हिस्से में ले जाया गया, और उस जगह मस्जिद अक्सा वो जगह है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से, आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम वैसे तो इराक से उनका ताल्लुक था, लेकिन वो जब उनको निकाल दिया गया तो वो माइग्रेट करके फलस्तीन आ गए थे। और ये जगह जो मस्जिद अक्सा की जगह है, ये बहुत सारे अंबिया का मरकज रही है। इसीलिए अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को वहां पे जमा किया। और दूसरी बात ये कि ये अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहू, ये वो जगह मस्जिद अक्सा की जिसको बरकत दी हमने, ना सिर्फ इस जगह को बल्कि इसके इर्द गिर्द की भी जगह को हमने बरकत दी। और बरकत के यहाँ पे दो माने हैं, एक तो हिस्सी बरकत है यानी जाहिरी तौर पे कि वहां की जमीन इतनी फर्टाइल है, इतनी जरखेज है, वहां पे बहुत प्लांटेशन बहुत ज्यादा है, वहां बागात हैं, वहां के फल उनका जायका जबरदस्त है, फल फूल बहुत खूबसूरत, ग्रीनरी बहुत है, तो हमने बरकत दी इस जगह को। तो ये एक जाहिरी बरकत है और एक रूहानी भी बरकत है। और वो बरकत ये कि बेशुमार अंबिया यहीं पैदा हुए, यहीं पे उन्होंने तबलीग की, यहीं पे वो दफन है। और ये सिर्फ पैलेस्टाइन का एरिया नहीं, इसमें सीरिया, फलस्तीन, ये जो इसराइल का एरिया है, जो लेबनान है, जॉर्डन है, ये सारा एरिया इसमें शामिल है। इस जगह पर अल्लाह ताला ने अंबिया को जमा किया। और हुआ क्या था, बुखारी शरीफ में ये हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज वाली रात काबतुल्ला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो आपके पास तीन फरिश्ते आए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे। उनमें से एक जो सबसे आगे था उसने पूछा, ये इन सब में से कौन है? दरमियाने वाले ने जवाब दिया, ये इन सब में बेहतर है, सब में खैर वाले हैं सबसे ज्यादा। कहा फिर इनको ले चलो, बस इस रात तो इतना ही हुआ। फिर आपने उन्हें नहीं देखा। दूसरी रात फिर ये तीनों आए, उस वक्त भी आप सो रहे थे, लेकिन आपका सोना इस तरह था कि आंखें सोती थी दिल जाग रहा होता था, और तमाम अंबिया की नींद इसी तरह की होती। इस रात उन्होंने आपसे कोई बात नहीं की, आपको उठाकर जमजम के पास ले आए, उसके कुएं के पास, और आपका सीना गर्दन तक खुद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से चाक किया और सीने और पेट की तमाम चीजें निकालकर अपने हाथ से जमजम के पानी से धोई। जब खूब पाक साफ कर चुके, अब आप सल्लम ये देख रहे हैं नो एनेस्थीजिया और ये सर्जरी हो रही है, जब खूब पाक साफ कर चुके और किस पानी से किया, जमजम से, तो अब आप जब जमजम पिए ना, तो फिर हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तूने इस पानी के साथ ही उनके दिल को साफ कर दिया था, जो पहले से ही साफ था, लेकिन और भी उनका सीना मुबारक चाक करके और अंदर से चीजें निकाल के दिल को पाक साफ किया गया, अल्लाह हमारे दिलों को भी इसी तरह पाक साफ कर दे। इसी पानी से पाक किया था ना, जन्नत का पानी नहीं लाए थे, चाहते तो वो भी ला सकते थे, लेकिन इससे जमजम की आपको पता चलती है कि कितनी फजीलत है। तो जब खूब पाक साफ कर चुके, तो आपके पास सोने की एक ट्रे लाई गई जिसमें सोने का एक प्याला था जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था, इससे आपके सीने को और गले की रगों को भर दिया गया, फिर सीने को सी दिया गया। अल्लाह हु अकबर, सुबहान अल्लाह। आप देखें, अगर आप कहेंगे ना कि हर चीज को सिर्फ मैंने अकल के ऊपर रखना है और फिर सोचना है और फिर हम मैंने कहना है कि अच्छा मैं इसको मानूं कि नहीं मानूं, तो ये गैब पे ईमान नहीं लाना, ये गैब पे ईमान नहीं है। जब हमारा ईमान हम डिक्लेयर करते हैं ना, तो हम ये मानते हैं कि जो कुछ हमें बताया गया कुरान में और सही हदीस में वो बिल्कुल ठीक है और उसमें कोई बात क्वेश्चनेबल नहीं है, और हम समयाना व अताना करते हैं। अब ये अगर आज आप ये कहें कि फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जो सफर कराया गया है ऊपर की तरफ, आप बताएं मुझे, आज आपके एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो खास किस्म का लिबास पहना जाता है एयर प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए। इसी तरह ऑक्सीजन वगैरह के टैंक्स रखे जाते हैं, क्योंकि जितनी आप बुलंदी पे जाते हैं, इवन हम किसी हिल स्टेशन वगैरह पे भी जाएं तो वहां पे भी ऑक्सीजन कम हो जाती है। पहाड़ के ऊपर चले जाए ना, ऑक्सीजन कम हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो सिर्फ पहाड़ के ऊपर चढ़े हैं, वो आसमानों पे ऊपर चले जाए तो वहां पे ऑक्सीजन की कितनी कमी होगी। तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं उन्होंने रखा? हम कहें नहीं जी फिर कैसे कैसे हो सकता है, नहीं जी फिर ये क्या। इसी वजह से बाज लोगों ने जब अक्ल के ऊपर रखा तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो मानते ही नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे जा सकते हैं, हम तो ये कहते हैं ख्वाब में गए थे। क्योंकि उनसे ये बताया नहीं जाता लोगों को कि हम किस तरह से आज भी साबित करें कि हमारे नबी इस तरह से सैर करके आए। अगर काफरों के लिए उस वक्त ये एक फितना बना, एक आजमाइश बनी, तो आज भी ये एक आजमाइश है कि जो नहीं मानने वाले वो फिर क्वेश्चन उठाते हैं, और फिर जो बेचारे बाज मुसलमान होते हैं और खुद भी वो अकल पे ही चीजों को परखते हैं, तो उनको साबित करने के लिए वो जल्दी से कह देते नहीं 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 ये असल में ऐसा नहीं है, वो तो बस ख्वाब का एक मामला था। जबकि हमें ये कहने में कोई तरद्दुद नहीं, कोई शर्म नहीं कि हमारे नबी ने जिस्म समेत ये सफर किया था। हम नहीं डरते इस बात को कहने से कि वो लोग मुखालिफ हो जाएंगे, जी वो क्या कहेंगे, जी वो कहेंगे कि ये कैसी बातें करते हैं, ये क्रेजी हैं, ये हमें इसकी परवाह नहीं। और इसीलिए तो सुभान का लफ्ज आया है ना कि अल्लाह ही ये कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हम अपनी लॉजिक सोचते हैं, हम अपनी अकल करते हैं, हम सोचते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर गौर करते हैं, फिर हम कहते हैं ये कैसे हो गया, लेकिन अल्लाह ताला सुबहान है, वो पाक है इन सारी चीजों से। के जो है ना, किसी के लिए कोई ऑक्सीजन चाहिए, वो चाहे तो अपने बंदे को ऐसे ही ले जाए, चाहे तो वक्त को ही रोक दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से तैयार किया गया, जैसे कि हम कहें कि हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं ना, जब तो हम कितनी तैयारी करते हैं, एक शादी के लिए कितनी तैयारियां होती हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी कैसे हो रही है ले जाने की? ये नहीं कि आला सूट लेकर आए और ये लेकर आए और शूज ऐसे ले आए और ऐसे आपको संवारा गया, नहीं, इसका मतलब अल्लाह ताला के पास जब जा रहे हैं, उसके करीब हो रहे हैं, तो दिल की सफाई, अंदर की सफाई। बात समझ आई कि नहीं? बहुत डीप बात है ये कि अल्लाह ताला ने क्या देखना, आपके हाल हुलिये, आपके हेयर स्टाइल, आपके ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड पर्स नहीं देखने, अल्लाह ताला ने आपके दिल को देखना। वो दिल इस काबिल है कि अल्लाह ताला को दिखाया जाए? अल्लाहु अकबर, ये कितनी अजीब सैर है कि जिसके अंदर पेट को चाक किया जा रहा है, अंदर को धोया जा रहा है। ऑपरेशन तो बड़े लंबे होते हैं और उसमें हीलिंग में कितना लंबा टाइम लगता है, किसी के टांके लग जाएं तो कितना लंबा टाइम लगता है उसको हील होने में, रिकवरी में। लेकिन ये कैसा ऑपरेशन है कि उसी वक्त दोबारा खड़े हो गए, चलने को तैयार है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह हु अकबर, इसीलिए सुबहान का लफ्ज आया, समझ आई ना? अब देखिए खुद ब खुद मुंह से निकला है ना सुबहान अल्लाह, खुद ब खुद, क्योंकि वाकई ये अल्लाह तेरे लायक शान ही है। फिर अल्लाह ताला की तरफ से क्या इंतजाम किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे पास बुर्राक लाया गया। बुर्राक का मतलब होता है बिजलियां, इसका मीनिंग है। तो वो गधे से ऊंचा था और खच्चर से नीचा था, जैसे सब समझ जाएंगे घोड़े की तरह चीज, एक वो एक एक कदम इतनी दूर रखता था जितनी दूर उसकी निगाह पहुंचती थी। आप सल्लम फरमाते मैं उस पर सवार हुआ, और जब सवार होने लगे थे तो उस वक्त भी वो थोड़ा सा बुराक जो था ना, उसकी उसकी लगाम भी थी, उसकी जीन भी थी। सवारी के बाद ना वो कुछ कुसमुसाया, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा क्या कर रहा है? वल्लाही तुझ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आपसे ज्यादा बुजुर्ग शख्स कोई सवार नहीं हुआ। इसका मतलब बुराक के ऊपर कोई और भी सवारी करता होगा, वल्लाहु आलम कौन, लेकिन कोई सवारी तो होगी जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई आपसे ज्यादा बुजुर्ग शख्स तुझ पे सवार नहीं हुआ। तो बुराक पसीना पसीनी हो गया, पसीना आ गया उसको आपकी अजमत से। तो वो इतना तेज चलने वाली ये सवारी थी कि हद्दे निगाह पे वो एक कदम रखता था। आप सोचें हमारी हद्दे निगाह क्या है। अब यहां से आप देखें, आप बाहर देखें तो आपकी हद्दे निगाह आसमान है, राइट? आपको आसमान नजर आता है ना, तो समझ लें उसका नेक्स्ट स्टेप वहां हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऊपर आप सवार होके जा रहे हैं। तो इब्ने जरीर में है कि बुराक ने जब जिब्राइल अलैहि सलाम की बात सुनी और वो फिर आपको सवार करके ले चला, तो इतनी दूर दूर जब वो कदम रख रहा था तो रास्ते में एक किनारे पर एक बुढ़िया को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, ये कौन है? जवाब मिला, आप चलें। फिर आपने चलते चलते देखा कोई रास्ते से अलग हो गया और आपको बुला रही है वो, कोई रास्ते से अलग हुई भी है और बुला रही है। फिर आप आगे बढ़े तो देखा अल्लाह की एक मखलूक है जो बुलंद आवाज से कह रही है, अस्सलाम वालेका या अव्वल, अस्सलाम वालेका या आखिर, अस्सलाम वालेका या हाशिर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप जवाब दें, तो आपने उनके सलाम का जवाब दिया। फिर दोबारा ऐसा ही हुआ, फिर तीसरी मरतबा, यहाँ तक कि आप बैतुल मक़दस पहुंच गए। ये कौन थी? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि रास्ते के किनारे पे जिस बुढ़िया को आपने देखा तो वो दुनिया थी और उसकी उम्र अब सिर्फ इतनी सी रह गई जैसे इस बुढ़िया की उम्र है, और जिसकी आवाज पर आप तवज्जो करने वाले थे वो अल्लाह का दुश्मन इबलीस था, और जिनके सलाम की आवाजें आपने सुनी वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम थे। सुभान अल्लाह, यानी इनकी आवाजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में सुनी थी। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे देखा कि एक जगह बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये खुशबू कैसी है? तो जवाब मिला, फिरौन की जो बेटी की मशाता थी, ब्यूटिशन थी, वो और उसकी औलाद के कब्र की खुशबू है। और आपको ये वाकया तो पता ही होगा कि किस तरह से फिरौन ने उनको जिंदा ही कैसे खौलते हुए तेल में डलवा दिया था, उसको भी और उसके बच्चों को भी। और उसने कहा था कि मेरे और मेरे बच्चों को एक ही जगह पे दफना दिया जाए। तो ये फिर हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सीन्स देखे जब आप जा रहे थे, तो रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिखाया गया। और इसके अलावा फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे हैं, अब आगे पीछे बहुत सारी रिवायात हैं इसके अंदर, लेकिन एक रिवायत में ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया, जैसे अब आप देखेंगे आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपके सामने कुछ पेश किया जाता है ना, तो आपके सामने पानी, शराब और दूध पेश की गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को पसंद फरमाया। तो जिब्राइल अलैहि सलाम ने फरमाया कि आपने फितरत का राज पा लिया, अगर आप पानी का बर्तन पी लेते तो आपकी उम्मत गर्क हो जाती, और अगर आप शराब पी लेते तो आपकी उम्मत बहक जाती। अच्छा, अब इस तरह से नबी अलैहि सलातो वसलाम को ले जाया गया मस्जिद अक्सा, और इसके बारे में एक रिवायत में आता है बाद में, बहुत बाद में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए थे तो आपने सारे बादशाहों को लेटर्स भेजे थे, तो हरकल जो था रोम का बादशाह उसके नाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर भेजा था। तो उसने तहकीक के लिए उसने कहा कि अरब से कोई लोग अगर आए हुए हैं तो उनको लेकर आओ, तो तिजारत के लिए लोग जाहिर है वहां पे जाते थे, तो उनके अंदर अबू सुफियान भी था, अबू सुफियान और उनके साथी। ये अभी फतह मक्का से पहले की बात है, सुलह हदैबिया हो चुकी थी उसके बाद। तो ये जो काफला था ये शाम आया हुआ था, तो उनको हरकल के दरबार में पेश किया गया। उसने बहुत सारे सवालात पूछे इनसे। और अबू सुफियान की दिली ख्वाहिश ये थी कि इस मौके पर कुछ ऐसी बातें मैं कर दूं कि जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हैसियत ना रहे इसके सामने, हराकल के सामने। लेकिन अबू सुफियान कहते हैं कि मुझे अपने इस इरादे से में कामयाबी नहीं हो रही थी, कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बात कहूं, और ये ना हो कि कोई ऐसी बात कह दूं कि जो झूठ निकल आए और मैं ही बादशाह की नजर से गिर जाऊं और मेरे साथी भी मुझे झूठे होने का ताना दें, साथी भी पीछे खड़े हुए थे। तो अलबत्ता एक बात मेरे हाथ लगी, मैंने बादशाह के सामने मेराज का वाकया बयान कर दिया कि देखें देखें ये तो ये कहता है। खुद ही बादशाह को समझ आ जाएगी कि ये झूठा आदमी है, नाउज़ुबिल्ला। तो मैंने कहा कि मैं इनका मामला आपको बताता हूँ, आप खुद मालूम कर लेंगे कि वो झूठ। रैकल ने पूछा, वो क्या वाकया? अबू सुफियान ने कहा कि ये जो नबूवत का दावा करते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक ही रात में मक्का से निकला और आपकी इस मस्जिद बैतुल मकदस में पहुंचा, और फिर इसी रात में सुबह से भी पहले पहले मक्का में वापस भी पहुंच गया। अच्छा, अब इलिया जो था वो उनका बहुत बड़ा आलिम था, उस वक्त हरकल के सरहाने पर करीब खड़ा हुआ था। उसने बयान किया, मुझे उस रात का पता है। शाह रोम उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, पूछा कि आपको कैसे वेल में और कैसे पता चला? उसने अर्ज किया कि मेरी आदत थी कि मैं रात को उस वक्त तक सोता नहीं था जब तक बैतुल मकदस के सारे दरवाजे ना बंद कर। उस रात मैंने हस्बे आदत तमाम दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन एक दरवाजा मुझसे बंद नहीं हो सका। तो मैंने अपने टीम को, जो अपना अमला था, उन लोगों को बुलाया, उन्होंने मिलके कोशिश की, मगर वो भी उनसे भी ना बंद हुआ। और दरवाजे के जो कबाड़ थे, कि को जो जो इसकी साइड, जो दरवाजे का जो एक हिस्सा होता है, वो भी अपनी जगह से हरकत नहीं कर रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे हम किसी पहाड़ को हिला रहे हैं। तो मैंने आजिज आके कारीगरों को और लोगों को बुलाया। उन्होंने देखकर कहा कि ये इन कुवाड़ों के ऊपर दरवाजे की इमारत का बोझ पड़ गया, अब सुबह से पहले इसके बंद होने की तो कोई भी तदबीर नहीं हो सकती, सुबह को हम देखेंगे कि किस तरह इसके साथ किया गया। कहते हैं मैं मजबूर होकर लौट आया और दरवाजा खुला ही रह गया। सुबह होते ही मैं फिर उस दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि दरवाजा जो मस्जिद के पास एक पत्थर है, उसकी चट्टान में कोई सुराख किया हुआ है, और ऐसा महसूस होता है यहाँ कोई जानवर बांधा गया था। उस वक्त मैंने अपने साथियों से कहा कि आज इस दरवाजे को अल्लाह ताला ने इसलिए बंद होने से रोका कि कोई नबी यहाँ आने वाला था। इस रात फिर आपने हमारी मस्जिद में नमाज भी इसका मतलब पढ़ी। तो यानी इससे आपको अंदाजा होगा कि वो भी इस चीज की गवाही देने से रह ना सका कि वाकई कोई अनयूजुअल बात यहाँ पे हुई है, वाकई कोई ऐसा वाकया हुआ है। और बास कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे नमाज पढ़ाई नबियों को, और बास कहते हैं कि जब आप वापस आए, मेराज से वापस आए, तब नमाज पढ़ाई। बाहर क्या जो भी सूरत हाल थी, हम देखते हैं कि ये इतनी मुबारक रात थी, बरकतों वाली रात थी, कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को जमा फरमाया। और अव्वल आखिर यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबी वहां पे जमा हुए हैं। और किस तरह जमा हुए हैं, क्या इसकी यानी रियलिटी किस तरह से थी, कैसे वो थे, वो हम कैफियत नहीं जान सकते। मगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि क्या रौनक होगी उस रात मस्जिद अक्सा में, जहां सितारे उतर आए। आज आपको कहते हैं ना ये लोग कि वो जी ऑस्कर अवार्ड और फलाना अवार्ड और वो पता नहीं, स्टार्स जमा हुए हैं यहाँ पे, स्टार्स। ये स्टार्स नहीं है, स्टार्स वो हैं जिनको अल्लाह ने स्टार बनाया। आज वो सारे स्टार्स मस्जिद अक्सा में आए हुए थे। ना इस जमीन ने कभी पहले ऐसा वाकया देखा और ना कभी दोबारा, कि इतनी बुजुर्ग हस्तियां वो हस्तियां जो इस जमीन पे बेस्ट, अपने अपने जमाने की बेस्ट हस्तियां थी, वो इस जमीन पे उतरी नहीं थी। और सब जमा है, और जमा किस लिए हुए हैं? कोई फीस्ट करने के लिए, कोई दावत नहीं हो रही, कोई उन्हें, हम तो जब भी जमा होते हैं तो हमारा तो जमा होना किस लिए होता है? खाना पीना, बस खाना शुरू, खाना चुना होता है, जबरदस्त से जबरदस्त खाने हैं बस, यही हमारे लिए एक इवेंट होता है। जो इवेंट है वो बस खाने के बगैर नहीं, यहाँ पे कोई खाना नहीं था। ये सब किस लिए जमा हुआ? ये सब के सब मिलके अल्लाह ताला के आगे झुक जाए। कैन यू इमेजिन, यहाँ पे आदम भी हैं, नूह अलैहि सलाम, इब्राहिम अलैहि सलाम, मूसा, ईसा, और बड़े बड़े पैगंबर, यूनस, हूद, सालेह, लूत, कितनी बड़ी हस्तियां, वो सब जिन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां लगा दी अल्लाह ताला की नाम को दुनिया में बुलंद करने के लिए, अल्लाह ताला की वहदानियत के लिए। सब अल्लाह के पसंदीदा, फेवरेट, चुने हुए लोग, VIPs, स्टार्स, ये है हिस्ट्री, ये हिस्ट्री बन रही थी। क्योंकि कभी दोबारा ऐसी तकरीब कभी नहीं होनी, ना पहले कभी हुई। इतनी बड़ा इवेंट था, सब खड़े हुए और इमाम का इंतजार कर रहे हैं, और इमामत का शर्फ किसको मिला? जिब्राइल अलैहि सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम को इशारा किया कि आप इमामत कराएंगे, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम को इमामुल अंबिया कहा जाता है, सब अंबिया के इमाम। अल्लाहु अकबर। तो ये इवेंट कैसा होगा कि सारे नबी वहां नमाज पढ़ रहे हैं, रात कैसी पुरसकून होगी, कितनी खामोशी, और वक्त थम गया, अल्लाह हू अकबर। इसीलिए मस्जिद अक्सा मामूली जगह नहीं है, ये वो सरजमीन है जहां पे इतने अंबिया ने अपना माथा टेका। इसलिए जब कभी जाने का शर्फ हासिल हो उस जमीन पे, उस मस्जिद में, तो ये जरूर सोचिएगा। और यहां से फिर आगे जो आप देख लेना, अब ये बरकत है ना, ये कितनी बड़ी बरकत है उस जगह की। यहां से फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सीढ़ी लाई गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से आगे आसमानों की तरफ गए, आसमानों की सैर, और वो भी बहुत ही दिलचस्प है, जिस वाक्य को इसरा में वो शामिल नहीं, वो मेराज में शामिल है, मेराज ऊपर को जाना, ठीक है। अब उसके वाक्य में जो कुराने पाक में ये वाक्य है, ये सूरत नजम में है मुख्तसरन, यहाँ पे तो सिर्फ इसरा का ही है। आपको पता होना चाहिए कि दोनों पार्ट्स हैं इसके, इस सफर के। तो रिवायात में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की इस मस्जिद के पास उस दरवाजे पर पहुंचे जिसे बाबे मोहम्मद कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहीं एक पत्थर जिसे जिब्राइल अलैहि सलाम ने अपनी उंगली लगाई तो उसमें सुराख हो गया था, वहीं बुराक को बांधा और मस्जिद पे चढ़ गए। और उसके बाद फिर वहाँ पे जो जमा थे उन सबको मौज़िन ने अजान कही, तकबीर हुई, और सब मुंतजर थे कि इमामत कौन कराएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहि सलाम ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे कर दिया, तो मैंने नमाज पढ़ाई। जब फारिग हुए तो जिब्राइल अलैहि सलाम ने कहा, जानते भी हैं कि आपने किनको नमाज पढ़ाई है? तो मैंने कहा नहीं। फरमाया, आपके पीछे ये सब मुक्तदी अल्लाह के पैगंबर है जिन्हें अल्लाह ताला मबूस फरमा चुका है। फिर मेरा हाथ थाम के आसमान की तरफ ले चले, और फिर बयान है कि आसमान के दरवाजे खुलवाए गए, और जिस दरवाजे पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम को जिब्राइल अलैहि सलाम लेकर जाते थे, तो वहां पे सवाल होता था पहले कि कौन है, और जिब्राइल अलैहि सलाम बताते थे कि ये फलां फलां है अल्लाह के पैगंबर। तो फिर दरवाजा खोला जाता था और मरहबा कहा जाता था। आप देख लें, दुनिया में मुखालफतें हो रही हैं, दुनिया में दुश्मनियां हो रही हैं, और आसमानों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा इस्तकबाल हो रहा है। और ये इसका मतलब है कि आसमानों पर पहरे हैं, आसमानों को के दरवाजे भी हैं, आसमानों के गार्ड्स भी हैं, ये भी हमें हदीस से पता चलता है। तो पहले आसमान पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो आदम अलैहि सलाम को वहां देखा उसी हालत में जिसमें वो उस दिन थे जिस दिन अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया था, यानी अपनी असली सूरत में। उनके सामने उनकी औलाद की रूहें पेश की जाती नेक लोगों की रूहों को देख के फरमाते हैं, पाक रूह और जिस्म भी पाक, इसे इल्लीयीन में ले जाओ। और बदकारों की रूह को देख के फरमाते हैं, खबीस रूह है, जिस्म भी खबीस है, इसे सिज्जीन में ले जाओ। एक तरफ देखते हैं तो खुश होते हैं, जाहिर है उनकी औलाद है, दूसरी तरफ देखते हैं तो गमगीन हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज लाई गई ना आपके सामने जो सीढ़ी, तो ये वही है जिससे इब्ने आदम की रूहें चढ़ती हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है और ना ऐसी देखी गई है, इसीलिए वो उस मेरे बायात में आता है कि मरने वाले की आंखें आसमान की तरफ इसीलिए चढ़ जाती हैं, वो इसी सीढ़ी को देख रहा होता है जिससे उसकी रूह ऊपर जानी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इस्माइल नामी फरिश्ते से मुलाकात की जो आसमाने दुनिया का सरदार है, जिसके अंडर 70,000 फरिश्ते हैं, जिनमें से हर फरिश्ते के साथ उसके लश्करी फरिश्तों की तादाद 1 लाख है। तो वाकई अल्लाह ताला के लश्करों को वही जानता है। तो यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई, और उसके बाद आपको दूसरे आसमान पर ले जाया गया, और हर आसमान पर किसी ना किसी पैगंबर के साथ मुलाकात की रिवायात हमें मिलती हैं, जिसके अंदर बाज में थोड़ा फर्क है, किसी का नाम है, किसी में किसी का नाम है। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम का आता है तो वो पहले आसमान पे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले थे, आपने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया मरहबा, और फरमाया आप मेरे बहुत ही अच्छे बेटे हैं। वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नहरें भी देखी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा ये नहरें क्या हैं, तो जवाब मिला ये नील और फुरात का आंसर है। फिर आपको आसमान में ले चले, एक और नहर देखी जिसमें लूलू और मोतियों के बाला खाने थे, जिसकी मट्टी खालिस मुश्क की थी, फरमाया ये कौन सी नहर है, फरमाया ये नहरे कौसर है। फिर इस तरह से ही आपको दूसरे आसमानों पर, फिर तीसरे पर, इसी तरह इजाजत, हर आसमान पे इजाजत ली जाती रही, और इजाजत लेके उन उन जो पैगंबर उस आसमान पे होते उनसे मुलाकात होती, फिर अगले आसमान पे जाते फिर उनसे। अब ये कैसे हो रही है, वो पैगंबर वहां पे क्या कर रहे थे, ये हमारे ना डिस्कस करने की बात है ना इसके ऊपर ज्यादा सोचने की बात, जो बात बताई जा रही है ना उसको देखें और उससे सबक लें, ना कि हम यही बस सोचने पड़ जाए अच्छा क्या हो रहे थे, वो क्यों वहां पे थे, वो करते वहां पे क्या है, वो क्या जिस्म समेत थे, वो क्या जिंदा है, वो क्या नहीं है जिंदा, क्या है, ये हमारे लिए सोचने की जरूरत नहीं। तो बाज रिवायत में आता है दूसरे आसमान पे यहया और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात का जिक्र है, दोनों खालाजाद भाई हैं, तीसरे पे यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पे इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पे हारून अलैहिस्सलाम, छठे पे मूसा अलैहिस्सलाम, और सातवें आसमान पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो बैतुल मामूर के साथ तकिया लगाए हुए बैठे थे। बैतुल मामूर में वो घर है अल्लाह ताला का जो आसमानों में है, और ये वो घर है जो इस बैतुल्ला जो जमीन पे है इसके ऊपर है। ठीक है, ये यानी आसमान वालों का किबला, आसमान वालों का काबा ये कह सकते हैं आप। तो वहां के मुतल्लिक फिर बताया कि हर दिन 70,000 फरिश्ते इसमें नमाज पढ़ते हैं, इसका तवाफ करते हैं, लेकिन एक दिन जो पढ़ ले नमाज, तवाफ कर ले, उसकी बारी फिर कयामत तक नहीं आती। इससे आप अंदाजा लगा लें कि अल्लाह ताला के लश्कर कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है, उसकी मखलूक कितनी है आसमानों के ऊपर। ऐसे नहीं आसमान चिरचिरा रहा होता, कितनी मखलूक है। फिर आपको सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचाया गया, जिसके पत्ते हाथी के कानों के बराबर थे और जिसके फल मटके जैसे थे, और जिसको अल्लाह ताला के अमर ने ढक रखा था। सिदरा बेरी को कहते हैं, तो बेर की तरह की, और इंतहा पे यानी वो ये मकाम इंतहाई बुलंद था। तो इतने बड़े बड़े पत्ते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सारी उम्मत को ढांक ले, इतने बड़े पत्ते थे। और वहां पे एक नहर भी जा रही थी जिसका नाम सलसबील था, और इसमें दो चश्मे थे जिस वो इसमें फूटे हुए थे, एक नहरे कौसर दूसरा नहरे रहमत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने उसमें गुसल किया। फिर ये यानी बुलंद तरीन मकाम, कोई इंसान इस मकाम तक नहीं पहुंच सका जहां तक आपकी पहुंच हुई, या सातवें आसमान पे है। जो चीज भी चढ़ती है वो बस यहीं तक पहुंचती है, फिर यहां से उठाई जाती है, और जो उतरती है वो यहीं तक उतरती है अल्लाह ताला की तरफ से, फिर यहां से फरिश्ते लेते हैं। और इस दरख्त पे, जो सिदरा का दरख्त था ना, इस दरख्त पे सोने की टिड्डियां छा रही थी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अजायबात दिखाए गए यहाँ पर कि जिनका जो इनको इमेजिन करना भी, जिनको सोचना भी इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर यहां से जन्नत, फिर आगे जन्नत की तरफ ले जाया गया, जन्नत दिखाई गई नबी अलैहि सल्लतु वसल्लम को। अब जन्नत की भी बहुत सारी बात आती है कि वो वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या देखा। अल्लाह अकबर। और इसके अलावा नबी अलैहि सल्लतु वसल्लम को जहां पे भी जा रहे थे आसमान में, वहां के फरिश्ते खुशी के साथ मुस्कुराते हुए आपका इस्तकबाल करते थे, सिवाय एक फरिश्ते के। फरमाया उसने मेरे सलाम का जवाब तो दिया लेकिन मुझे मरहबा नहीं कहा। मुझे मरहबा भी कहा लेकिन मुस्कुराए नहीं, सलाम का जवाब भी दिया, मरहबा भी कहा, मुस्कुराए नहीं। तो आपसे सलाम ने पूछा ये कौन है और इसकी वजह क्या है। जिब्राईल अलैहि सलाम ने फरमाया ये मालिक फरिश्ता है जो जहन्नुम का दारोगा है, अपने पैदा होने से लेके आज तक ये कभी नहीं हंसे और कयामत तक हंसेंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी खुशी का यही एक बड़ा मौका था, अगर आज नहीं हंसे हैं तो फिर भी नहीं हंसेंगे। तो ये वहां पे हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वादी दिखाई गई जहां पे नहायत बुरी और भयानक मकरू आवाजें आ रही थी और सख्त बदबू भी थी। आपने पूछा तो आपको बताया गया ये जहन्नुम की आवाज है, वो कह रही है अल्लाह मुझसे अपना वादा पूरा कर और मुझे वो दे, मेरे तौक, मेरी जंजीरें, मेरे शोले, मेरी गरमाइश, मेरा थोर और लहू पीप, मेरे अजाब और सजा के सामान बहुत ज्यादा हो गए, मेरी गहराई बहुत ज्यादा है, मेरी आग बहुत तेज है, मुझे वो दे दे जिसका वादा मुझसे किया हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया हर मुशरिक, हर काफिर, खबीस, मुनकर, बेईमान मर्द और औरत तेरे लिए। ये सुन के वो राजी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यहाँ पे नमाज का भी तोहफा अता फरमाया, और अपने अर्श तले से सूरह बकरा की आखिरी आयात भी आपको अता हुई। और फिर आपको बहुत सारी और चीजें दिखाई गई, बहुत सारे लोग ऐसे एक सिंबलाइज करके दिखाए गए कि जो ये करने वाला, इसका ये अंजाम है, फलां का ये अंजाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे कि एक नहर दिखाई गई जिसमें लूलू, याकूत और इसके जाम थे और बेहतरीन खुशबू थी और सब परिंदे थे। तो आपने पूछा कि ये परिंदे क्या हैं, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ इनके खाने वाले इनसे भी अच्छे हैं। यानी ये परिंदे उनके लिए, जन्नतियों के लिए। फिर फरमाया, ये जानते हैं आप ये नहर कौन सी है? फरमाया, नहीं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये नहरे कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता की, इसमें सोने चांदी के प्याले थे जिसपे याकूत और जुमरद उस पे जड़ा हुआ था, इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद था। तो आपने फरमाया, मैंने एक सोने का प्याला लेके पानी भर के पिया तो वो शहद से भी ज्यादा मीठा था और मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार था। और जब मैं उससे भी ऊपर पहुंचा तो, यानी ये वहां की बात हो रही है सातवें आसमान की, कि जब मैं इससे ऊपर पहुंचा, सिदरा तक गए, तो वहां एक नहायत खुश रंग बादल ने मुझे आ घेरा जिसमें मुख्तलिफ रंग थे। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तो मुझे छोड़ दिया और मैं अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिर पड़ा। फिर आपको ये नमाजें अता हुई और ये सब आपको दिया गया। और फिर जैसे कि आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का तोहफा दिया गया था, ये तोहफा था। तो लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, आप कम कराएं कम कराएं, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दफा जाते रहे, हत्ता के 5 नमाजों का तोहफा आपको दिया गया और कहा गया कि ये 5 जो हैं ये भी 50 के बराबर हों, इनका अजर मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बनी इसराइल का तजुर्बा कर चुका हूँ, उन्होंने तो इससे भी हल्का हुक्म दिया गया था लेकिन उनसे ये भी नहीं पूरा हुआ, तो आप जाके अल्लाह ताला से और कमी की दरख्वास्त करें। तो आपने फरमाया, ए कलीमुल्ला, मैं गया आया, अब मुझे शर्म महसूस होती है। तो उन्होंने फरमाया कि अच्छा, फिर आप तशरीफ ले जाइए। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात ईसा अलैहिस्सलाम से भी हुई थी। और इस तरह से ये भी रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज वाली रात जन्नत में जब गए थे ना, तो वहां एक तरफ से पैरों की चाप की आवाज आई, तो आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन है? जवाब मिला, बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो आपने वापस आके बिलाल को बताया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हूरें भी देखी और महल भी देखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महल और एक हूरों के बारे में पूछा तो बताया गया कि ये उमर की हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को आके बताया कि मुझे उमर की गैरत के वजह से मैं उस महल में नहीं गया, तो हजरत उमर रो पड़े थे कि मैं आपके ऊपर गैरत खाऊंगा। और यूसुफ अलैहि सलाम को भी देखा, उनके बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इतने हसीन थे जैसे जो फजीलत चांद को सितारों पे है, उस तरह इतने हसीन थे वो। नहीं, अगर बहुत कोई दुनिया में खूबसूरत तरीन भी आप इंसान देख लें तो समझ लें कि वो सितारा होगा उनके सामने, इतने वो खूबसूरत थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया कि बाज़ रिवायात में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए थे तो तब अम्बिया को नमाज पढ़ाई, बाज़ में ये है कि नहीं, जब आप गए थे तो तब नमाज पढ़ाई थी, तो वल्लाहु आलम। तो हो सकता है जब आप वापस आए हो तब पढ़ाई हो, लेकिन आप आए मस्जिद अक्सा और उसके बाद फिर वापस मस्जिद हराम। तो वापसी में कुरैशियों के एक काफले को देखा जो गल्ला लादे जा रहा था, उसमें एक ऊंट था जिस पर एक सफेद और सियाह बोरा था। जब आप उसके करीब से गुजरे तो वो जैसे होता है ना, जानवर बिदक जाता है, तो वो बिदक गया और मुड़ गया और गिर पड़ा और लंगड़ा हो गया। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो सुबह हुई, तो आपने इस मेराज का जिक्र लोगों से किया। असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे काबतुल्लाह के साथ कि अबू जहल आया और उसने कहा कि और कोई नई बात है? उसने तो मजाक से किया, और कोई नई बात है तो सुनाओ। तो आप ने फरमाया कि हाँ, आज तो एक बहुत ही अजीब वाक्या हुआ, और वो ये कि इस तरह बताया कि मैं ऐसे गया था और एक रात में ही वापस आया। उसने कहा ठहरो ठहरो, ये बात मैं औरों को बुला लूँ, उनको भी बताओगे उनके सामने भी? आप ने फरमाया हाँ, वो अल्लाह ताला ने देखे उसको बना दिया, एक फासिक फाजिर से भी अल्लाह अपना काम ले सकता है, अल्लाह ताला ने उसको जरिया बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी को जाके बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही भागता फिरा और लोगों देखो देखो ये कैसी आज अजीब बात कर रहे हैं, लोगों इधर आओ इनकी बात सुनो, लोगों इधर आओ इनकी बात सुनो। अल्लाह ताला इस दुनिया में चाहे तो किसी फासिक से भी अपने दीन का काम ले सकता है। आज बहुत सारे फासिक फाजिर हैं जो इस दीन इस्लाम के बारे में प्रोपोगेंडा करते हैं, और उनके प्रोपोगेंडा से ही वो दीन आगे से आगे पहुंच रहा है, जिसको इस्लाम का पता भी नहीं था वो भी ये जान गया कि इस्लाम एक मजहब। तो उसने जाके लोगों को जमा किया और उसने अबू बकर सिद्दीक के पास जाके कहा कि आज तो देख लो तुम्हारे पैगंबर क्या कहते हैं, कि वो आज एक ही रात में महीने भर के फासले के मकाम तक होके वापिस भी आ गए। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने पूछा कि क्या वाकई आपने ये फरमाया है? उसने कहा हाँ। तो एक तरद्दुद भी नहीं, फरमाया आप सच्ची हैं, हम तो इससे भी बड़ी बात को सच्चा मानते हैं जो आपने कही है कि अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से खबरें पहुंचती हैं उन तक, आन की आन में खबरें पहुंच जाती हैं, हम तो इतनी बड़ी बात मान जाते हैं, तो ये क्या मानना हमारे लिए मुश्किल। और इसी वजह से आपको अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सिद्दीक का लकब मिला। तो उन्होंने फिर पूछा मुशरिकीन ने कि आप अपनी सच्चाई की कोई अलामत पेश करें, तो आपने फरमाया हाँ मैंने रास्ते में फलां फलां जगह कुरैश का एक काफिला देखा था, उनका एक ऊंट था जिसपे इस तरह दो बोरे थे, वो मुझे देख के बिदक गया, घूमा और चक्कर खा के गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई है। जब वो काफिला आया तो लोगों ने पूछा कि रास्ते में कोई नई बात तो नहीं, उन्होंने कहा हाँ जी फलां फलां हमारा ऊंट इस तरह से गिर गया और ऐसे हो। तो देखें ये बात उनको पता चल गई लेकिन फिर भी मानने से इनकार, फिर भी इस चीज के ऊपर तरद्दुद। फिर उन्होंने कहा कि हम आपसे पूछते हैं, आप वहां के बारे में बताएं कि वहां के कितने, आप कहते हैं ना वहां पे मस्जिद अक्सा होके आए, वहां के कितने दरवाजे हैं, वहां के कितनी ये सब हैं, ये आप हमें बताएं, तब हम माने के। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जाके वहां के दरवाजे थोड़ी गिने या वहां की चीजें थोड़ी, इंसान कहीं जाता है तो वहां गिनता थोड़ी है कि कितने हैं कैसे हैं क्या है। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसको कर दिया, आपकी आंखों के सामने आप देखते जाते थे और बयान करते जाते थे। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने पूरी जो जैसे वहां की सारी थी बातें वो सारी बयान कर दी इसको देख देख के, लेकिन वो लोग फिर भी ना माने। अरे अब आप रिटाई और हट धर्मी को तो नहीं कोई इलाज कर सकते ना, कि अगर कोई इंसान तुल गया है कि नहीं मानना तो फिर वो नहीं मानेगा, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी भी वहां का सफर नहीं किया था, कभी वहां गए नहीं थे, वैसे आम हालात में कभी नहीं गए थे। तो सोचने की बात ये थी कि ये कैसे ये बयान कर सकती हैं। फिर इस तरह से ये पूरा वाकया हुआ और इससे मुखालफत का एक तूफान खड़ा हो गया आपके सामने, और बाज कमजोर ईमान वाले मुसलमान भी इसका शिकार हो गए। एक अहम और बात भी है कि इसी सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहि सलाम को भी अपनी असली सूरत में देखा, कि उनके 600 पार थे असली सूरत में, एक दफा दुनिया में भी देखा हुआ था लेकिन वहां पे भी फिर देखा। तो ये वाकया मेराज इसरा वल मेराज की कुछ तफसील थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बरकत दी है इसको और इसकी इर्द गिर्द को, और अल्लाह ताला ने यह सफर क्यों कराया, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम आपको अपनी निशानियां दिखाएं, अपनी निशानियां दिखाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो निशानियां देखें और आगे लोगों तक बयान करें। तो मस्जिद अक्सा इस जगह को अल्लाह ताला ने बरकत दी भी है और इसकी इर्द गिर्द वाली को, यही वो मस्जिद है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ पे नमाज पढ़ने का अजर 1,000 नमाजों के बराबर है। और ये भी कि 3 मस्जिदों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके लिए सफर करना की इजाजत है, सफर किया जा सकता है। एक मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सर, मस्जिद नबी। बाकी इसके अलावा किसी जगह को मुकद्दस समझ के कि ये मस्जिद बड़ी मुकद्दस है, हम यहाँ पे जाएं और यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अजर मिलेगा, ऐसा नहीं है। और इस इसरा का मकसद एक और भी पता चलता है। मस्जिद अक्सा देखें, एक यहूदियों के लिए एक बड़ा मकाम था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वहां पे ले जाया गया तो असल में अब बता दिया गया कि अब यहूदी उस मकाम से माजूल कर दिए गए हैं, उनको हटा दिया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये मनसब मिल गया है। उनका किबला था ना ये, अब आप लोग हट गए और अब ये शान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मिली है कि अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया। असल में हमारे चुनने के और हमारे किसी तोहफा देने के और हमारे मेहमानी के डिफरेंट चीजें हैं, और अल्लाह ताला के हाँ देखें आप सोचेंगे कि नमाज एक तोहफा, सूरह बकरा की आखिरी आयात तोहफा, जो इस उम्मत में शिर्क नहीं करेगा उसकी बख्शिश कर दी जाएगी, ये तोहफा। तो अल्लाह ताला के हाँ तोहफे डिफरेंट तरह के हैं, और एजाज भी डिफरेंट तरह के हैं। हम कहते हैं एजाज ये होता है कि पैसे बहुत सारे मिल जाए, ये एजाज है, ये शान है कि अल्लाह ताला चुन ले जिस पे अल्लाह फखर करे। तो अल्लाह ताला के हाँ अब उम्मते मुस्लिमा वो ग्रो वो उम्मत है जिसको अल्लाह ताला ने अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए चुन लिया। पहले यहूदी थे जिनको चुना गया था। अल्लाह ताला ने ये आयात, ये साइंस दिखाए, इन्नहु वस्समीउल अलीम, बेशक वो सुनने वाला भी है देखने वाला भी है। यानी जितना सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से निकले वापस आए, सब अल्लाह ताला की नजर में भी है, वही देखने वाला वही सुनने वाला। तो ये आयत हमारे गैब पर ईमान का इम्तिहान है, क्योंकि अगर हमारा वाकई गैब पर ईमान है और इस पर ईमान है कि अल्लाह ताला की जात सुबहान है और अला कुल्ली शै इन कदीर है, तो फिर हम इस पर ईमान रख सकते हैं इस आयत पर। और अगर ऐसे में कहीं कोई खराबी है, कहीं कोई मसला है, तो फिर अक्ल कहेगी कि हाय इतने में तो जहाज में भी जाएंगे तो नहीं पहुंच सकते, इतने में तो ऐसे नहीं हो सकता, कौन सी वो सवारी थी, कैसे हो गया, रॉकेट में भी चले जाए तो तब भी नहीं ऊपर इतनी जा सकते, और कैसे एक इंसान जिस्म के साथ, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो उस रब के लिए जो मोमिनों की रूहों को आसमान तक ले जा सकता है, तो जिस्म के साथ भी इंसानों को आसमान तक लेके जा सकता है। इसलिए इससे हम ईमान को भी अपने चेक कर सकते हैं कि हमारा ईमान क्या है, हमारा ईमान कितना है। और अब इसके बाद, इस वाक्य के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया और तमाम मजाहिब वालों के लिए आप नबी बन गए। ये सब की कयादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो ईसाई, यहूदी या जो भी किसी और नबी को मानने वाला था, उसको अब आपकी तरफ ही रुजू करना चाहिए। अब कयामत तक के लिए आपकी ही नबुव्वत है, ये अलामत है ना, देखिए जो आपने इमामत कराई, सारी पिछली शरीयतें अब आपकी शरीयत से कैंसल हो गई, क्योंकि आप इमाम है सबके। जिसने आपको नहीं माना, उसने समझे अपने नबी को भी नहीं माना। तो वो चीज जो इंसान सोचता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकती, अल्लाह ताला के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है।